तारीख 18 जुलाई दिन बृहस्पतिवार, कार्यक्रम दिन भर। नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट आज नहीं, विरोध में भारतीय जनता पार्टी विधायक रात भर सदन में धरना देंगे।
प्रस्तावने तगड़क आगल बिकॉज 15 जन बरगिल्वल
अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद भारत के विदेश मंत्री ने कहा सरकार कुलभूषण जाधव को भारत वापस लाने के लिए कोशिशें जारी रखेगी।
I'm sure joins me in welcoming this landmark judgment. The sentiments I express on this matter are those of the entire house. Indeed.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार। कार्यक्रम में होगी आपकी राय भी, पर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार आदर्श राठौर से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी को विधानसभा में विश्वास मत साबित करने के लिए एक दिन का वक्त और मिल गया है। विधानसभा में गुरुवार को विश्वास मत पर 7.5 घंटे बहस चली। इसके बाद स्पीकर रमेश कुमार ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है। BJP विधायकों ने स्पीकर के फैसले के विरोध में रात भर धरने पर बैठने का ऐलान किया है। जापान के क्योटो शहर में हुई संदिग्ध आगजनी की घटना में अब तक 33 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों को शक है कि एक शख्स ने जानबूझकर मशहूर एनिमेशन स्टूडियो में आग लगा दी। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। पुलिस के मुताबिक आग लगने से पहले एक शख्स को ज्वलनशील पदार्थ का छिड़काव करते देखा गया था। इसके बाद धमाका हुआ और कई लोकप्रिय एनिमेशन सीरीज बना चुका क्योटो एनिमेशन स्टूडियो आग की चपेट में आ गया। इस घटना को अंजाम देने वाले संदिग्ध का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक स्थानीय महिला ने बताया कि संदिग्ध हमलावर काफी चिढ़ा हुआ दिख रहा था। जिस आदमी को पुलिस ने हिरासत में लिया है वो दर्द से कराह रहा था, मगर साथ ही वो बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था और गुस्से में नजर आ रहा था। मुझे ऐसा सुनाई दिया मानो वो कह रहा हो तुमने नकल की है। ये थे क्योटो एनिमेशन स्टूडियो में आग लगने के घटना के प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। ब्रिटेन के आर्थिक मामलों पर नजर रखने वाले आधिकारिक संस्थान ने अनुमान लगाया है कि ब्रिटेन अगर बिना ब्रेक्जिट डील के यूरोपीय संघ से बाहर होता है तो अगले साल उसे मंदी से जूझना पड़ेगा। अगले महीने ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। इस पद के दोनों दावेदारों का कहना है कि वो बिना समझौते के ही यूरोपीय संघ से निकलने के लिए तैयार हैं, मगर यूरोपीय संघ के मुख्य ब्रेक्जिट वार्ताकार माइकल रोथ का कहना है कि अगर मंदी आई तो ब्रिटेन को इसका खामियाजा भुगतना होगा और यूरोपीय संघ के रुख पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि ब्रेक्जिट डील पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। नया प्रधानमंत्री बनने का मतलब ये नहीं होगा कि हम फिर से शुरू से वार्ता करेंगे। यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन को अतिरिक्त समय दिया था ताकि वो अपने यहाँ इस समझौते की स्वीकार्यता को बढ़ा सकें, इसे मंजूर कर सकें। अतिरिक्त समय इसलिए नहीं दिया गया था कि आप हमें इसे पुनर्विचार करने के लिए कहने लगें। यूरोपीय संघ बातचीत करने के लिए तैयार है, मगर नए समझौते के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। ये थे यूरोपीय संघ के मुख्य ब्रेक्जिट वार्ताकार माइकल रोथ के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी पिछली सरकार के दौरान हुए एक गैस समझौते में कथित गड़बड़ी को लेकर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह रेडक्रॉस का कहना है कि उत्तर कोरिया में पड़े अकाल के कारण इस साल फसलों की पैदावार सामान्य के मुकाबले आधी रह सकती है। उत्तर कोरिया में लाखों लोग पहले ही कुपोषण से जूझ रहे हैं। रेडक्रॉस का कहना है कि वहां पर कुपोषण और इससे जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। 25 साल से उत्तर कोरिया में काम कर रहे रेडक्रॉस समूह ने उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई के लिए फंड की अपील की है ताकि फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सके। ईरान के एक सरकारी टीवी चैनल का कहना है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ने रविवार को खाड़ी में एक विदेशी टैंकर पकड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये टैंकर 10 लाख लीटर तेल की तस्करी कर रहा था। हालांकि ईरान की ओर से ये नहीं बताया गया है कि ये टैंकर किस देश का है। दक्षिण इथियोपिया के अलगाववादियों ने अपने इलाके को स्वतंत्र घोषित करने की योजना को बदल दिया है। बुधवार को सरकार की ओर से जनमत संग्रह करवाने का ऐलान किया गया था। अब अलगाववादी इस जनमत संग्रह में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सिडामा लिबरेशन मूवमेंट 18 जुलाई को अलग देश घोषित करने वाला था। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com और रेडियो पर लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत में सबकी निगाहें आज कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही पर लगी हुई थी कि क्या वहां मुख्यमंत्री कुमार स्वामी की सत्ता रहती है या फिर जाती है, क्योंकि आज वहां सरकार को विश्वास मत हासिल करना था। लेकिन विश्वास मत पर 7.5 घंटे चली बहस के बाद स्पीकर रमेश कुमार ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। इस तरह से कुमार और स्वामी को विश्वास मत साबित करने के लिए एक दिन का वक्त फिलहाल और मिल गया है। विश्वास मत पर सत्ता पक्ष के भाषणों पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया और कहा कि स्पीकर विश्वास मत को टालना चाहते हैं। विधायकों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने स्पीकर से कहा कि वो आज ही विश्वास मत कराए जाने पर विचार करें, लेकिन स्पीकर ने आखिर अंत में कार्यवाही स्थगित कर दी। कार्यवाही स्थगित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने रात भर सदन में धरना देने का फैसला किया है। सदन में क्या कुछ हुआ, बंगलुरु से सुनिए हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी से।
पहली आवाज जो आप सुन रहे हैं वो बीजेपी के सदस्य जेसी मधुस्वामी की है। मधुस्वामी और बीजेपी के अन्य सदस्य इस तरह की झड़प कई बार कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के सदस्यों के साथ होती रही। मधुस्वामी कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद कांग्रेस को इस तरह के सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया ने न्यायालय का उस निर्देश पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया है कि 15 भागी विधायकों को विधानसभा के कार्यकलाप में भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस आदेश से सिद्धरामैया का कहना था,
प्रस्तावने तगड़क आगल बिका 15 जन बरगिलवल बिका दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भागी विधायक विधानसभा के कार्यों में अगर भाग नहीं भी लेते हैं तो ये ठीक है। इसके मद्देनजर हमारा सवाल ये है कि एक राजनीतिक पार्टी का हक खो गया है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के लिहाज से हमारा हक छीना जा रहा है। तो जब तक विधानसभा इस विषय पर निर्णय नहीं लेता है तब तक विश्वास मत पर किसी भी तरह की बहस नहीं हो सकती है। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। इस बीच खबर ये आई कि कांग्रेस के एक विधायक श्रीमंत पाटिल कल रात अचानक मुंबई चले गए और वहां पहुंचने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने अपनी छाती में दर्द की शिकायत की थी। इस विषय को मंत्री डीके शिवकुमार ने उठाया, जिसके बाद स्पीकर रमेश कुमार ने गृह मंत्री एमबी पाटिल को निर्देश दिया कि वो विधायक के स्वास्थ्य रिपोर्ट की जांच करवाएं। जब इस विषय पर बहस हो रही थी तभी बीजेपी के सदस्य स्पीकर रमेश कुमार पर भी इल्जाम लगाया कि वो विश्वास मत पर बहस करने के लिए सहूलत करना चाहिए। इसके फौरन बाद बीजेपी के कुछ विधायक राज्यपाल वजूभाई वाला के पास चले गए और उस मुलाकात के बाद राज्यपाल ने स्पीकर को एक संदेश भेजा। स्पीकर रमेश कुमार ने विधानसभा में उनका संदेश पढ़ा।
डियर ऑनरेबल स्पीकर, द मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस मूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर कर्नाटका इज इन कंसिडरेशन बिफोर द हाउस टुडे।
इस पर विधानसभा में मंत्री आरवी देशपांडे और कृष्ण बैरागौड़ा ने कहा कि जब विधानसभा उसी विषय पर चर्चा कर रही है तो उस पर कोई वक्त की पाबंदी नहीं रखी जा सकती। आज के कार्यकलाप से लग रहा है कि कर्नाटका विधानसभा कुछ विवादास्पद कदम उठा सकते हैं। ये कदम महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सत्तारूढ़ पक्ष में ये स्पष्ट होते जा रहा है कि सरकार गिरने वाली है, तो किसी बात की फिक्र नहीं करना चाहिए। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
भारत और पाकिस्तान दोनों ही कल भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के दिए गए फैसले पर जीत के दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान जाधव को मुक्त करने के लिए भारतीय अनुरोधों को खारिज करने के अदालत के फैसले की ओर इशारा कर रहा है, जबकि भारत इस तथ्य पर है कि अदालत ने पाकिस्तान को जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करने का आदेश दिया। भारत के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस फैसले को भारत की जीत बताया। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने इस फैसले को पाकिस्तान की बड़ी जीत बताया। दोनों ही देश की सरकारों और मीडिया ने अदालत के फैसले को अपनी अपनी जीत बताया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि हम इस मील के पत्थर वाले फैसले का स्वागत करते हैं और न सिर्फ ये सदन की भावना है बल्कि पूरे देश की भी।
I'm sure joins me in welcoming this landmark judgment. The sentiments I express on this matter are
विदेश मंत्री कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला न केवल भारत और जाधव के लिए प्रामाणिकता का सबूत है, बल्कि उन सभी के लिए है जो कानून व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पवित्रता में भरोसा करते हैं। सरकार जाधव की सुरक्षा और देखरेख सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें शीघ्र भारत वापस लाने की कोशिश जारी रखेगी। उधर जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान कुलभूषण के मामले को अपनी जीत बता रहा है, तो जाधव के मामले में दोनों देश अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हमारे सहयोगी जुबैर अहमद ने इन दोनों देशों की जीत के दावों की पड़ताल की है। तो जुबैर, सबसे पहले यही बताइए कि हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले की वास्तविकता क्या है?
सच, जब पूरी आप फैसले पर नज़र डालेंगे तो लगेगा कि ये मैच एक तरह से बराबर हुआ। ये फैसला जो है, कुछ भारत की बात मानी गई है और कुछ भारत ने जो एतराज़ात किए थे उसको अदालत ने रद्द कर दिया है।
भारत की क्या क्या अपील थी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, और जिस पर सबसे ज़्यादा जो हेडलाइन खबर बन रही थी कि फांसी की सज़ा पर रोक, इसके मायने क्या है?
फांसी की सज़ा पर रोक का कोई इसमें फैसले में नहीं है, लेकिन अदालत ने ये ज़रूर माना है कि जो सैन्य अदालत में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जो कुलभूषण जाधव के खिलाफ मौत की सज़ा सुनाई है वो कन्वेंशन के खिलाफ है। वो इसलिए खिलाफ है क्योंकि उनको कोई वकील करके नहीं दिया था।
काउंसलर एक्सेस, जिसकी भारत डिमांड कर रहा है,
जो वहाँ भारत का जो दूतावास है वहाँ के लोग उससे जाके मिले, इसकी इजाज़त नहीं दी थी पाकिस्तान ने। तीसरी बात ये कि उनको उनके अधिकार के बारे में पाकिस्तान सरकार ने नहीं बताया था। भारत का ये भी कहना था कि कुलभूषण जाधव को वहाँ से रिलीज़ किया जाए और सुरक्षित तौर पर भारत वापस लौटाने के लिए अदालत पाकिस्तान से कहे। अदालत ने ऐसा कोई फैसला भारत के हक में नहीं दिया है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि हाँ, इस फैसले को पाकिस्तान रिव्यू करे। इसका मतलब
यानी कि फांसी की सजा पर पुनर्विचार करे और वो फैसले को एक बार रिव्यू करे,
जिसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है। रिव्यू करने का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान सिविलियन कोर्ट में अगर वो फिर से मुकदमा चलाती है तो भारत की एक तरह से समझ ली कि संतुष्टि होगी।
पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि ये फैसला उसके हक में है?
भारत की मांग थी कि उसको उस अदालत से रिहा किया जाए, उसको भारत वापस भेजा जाए। ये बात जो है बिल्कुल नहीं मानी है अदालत ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की शिकस्त थी।
सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि पाकिस्तान ने ये कहा कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठाना ही ठीक नहीं है क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है।
बिल्कुल, पाकिस्तान का जो ये एतराज़ है कि भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आकर गलती की है, क्योंकि इसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ये खारिज कर दिया और ये कहा कि भारत का पूरा अधिकार था और भारत का आना यहाँ पर सही था।
ये जो फैसला है ये कितने जजों के पैनल ने सुनाया?
देखिए, ये 16 जजों पर एक पैनल बना था जिसमें 15 जजों ने जो भी फैसले सुनाए वो भारत के पक्ष में गए और एक जज मिस्टर जिलानी थे, वो जिनका
पाकिस्तान के
हैं वो, और वो हर फैसले में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है।
जुबैर अहमद बता रहे थे। कुलभूषण जाधव के केस में आईसीजे के फैसले पर इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता शुमेला जाफरी ने बात की पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार अहमर बिलाल सूफी से और यही पूछा कि पाकिस्तान इस फैसले की समीक्षा कैसे करेगा जो मौत की सजा दी गई है।
इफेक्टिव रिव्यू की बात हुई, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इफेक्टिव रिव्यू?
देखिए, बतौर एक रिस्पॉन्सिबल रियासत पाकिस्तान को और हर मुल्क को फॉर दैट मैटर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो व्यू है और उसकी जो डायरेक्शन है उसको आप होल्ड करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट नेक नीति से करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इफेक्टिव रिव्यू का मतलब भी इन्हीं मानों में होगा कि रिव्यू इसका कैसे हो। अब रिव्यू और इम्प्लीमेंटेशन दो अलग अलग चीज़ें, कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस जजमेंट के लिए एक लीगल प्रोसेस है, हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है पाकिस्तान का और इंडिया का भी है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, जिसमें फॉरेन जजमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन का एक मैकेनिज्म है। तो क्या हुकूमत ये समझेगी और ये पॉलिसी लेवल पे फैसला करेगी सिविल प्रोसीजर कोर्ट की कन्वेयर बेल्ट में एंटर होना है, एक ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि एक रिव्यू मैकेनिज्म है कि आप कुलभूषण को भी अलाउ कर दें कि वो एक रिट पिटिशन अगर फाइल करना चाहे तो वो कर दे हाई कोर्ट में कि जी मेरा ट्रायल जो है उसको कलअदम करार दिया जाए, ड्यू प्रोसेस डिनाइल है। तो वो जो रिट पिटिशन की हेयरिंग होगी क्या वो इफेक्टिव रिव्यू के ज़ुमरे में आ जाएगा, ये एक और एस्पेक्ट है, जो ऑप्शन भी है एस्पेक्ट भी है। और तीसरा रिव्यू का एक और तरीका ये है कि आप स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी आप, हम आपको सारा मटेरियल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप काइंडली इसको एग्जामिन कर लीजिए, क्योंकि आईसीजी ने डायरेक्शन दी है कि इन दी इवेंट कि अगर हमने इसको एक्सेस नहीं दी तो उसके ना देने का इम्पैक्ट उस पर क्या है कन्विक्शन पर। सो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं और मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली बिकॉज जूँ जूँ डिलीब्रेशन होंगी, लीगल टीम हेग से वापस आएगी और फिर बैठेंगे ये लोग, तो फिर ये इन सब चीज़ों पर बहस करेंगे।
कुलभूषण जाधव की मौत की सज़ा के रिव्यू के क्या मायने हैं, इस ये बता रहे थे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार अहमद बिलाल सूफी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 12 सदस्यों की टीम ने गिरफ्तार किया है। अब्बासी को सैकड़ों अरब रुपए के लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात के अनुबंध देने में गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कैसे गिरफ्तारी हुई, अब से कुछ देर पहले मैंने बात की इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता शुमेला जाफरी से।
आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उस वक्त गिरफ्तार किया गया है जब वो इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे अपनी पार्टी पीएमएलएन के जो लीडर हैं शहबाज शरीफ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी की आज हाजिरी थी रावलपिंडी की अकाउंटेबिलिटी अदालत में, लेकिन उन्होंने आज ना जाने का फैसला किया। सुबह से ही खबर चल रही थी कि ये शायद उनकी पार्टी का डिसीजन है कि वो अब अकाउंटेबिलिटी की अदालत में पेश नहीं होंगे।
शुमेला, इससे पहले नवाज शरीफ को भी इसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार किया और उसके बाद अब दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री भी इनके निशाने पर हैं, ये सारे मामले हैं क्या बेसिकली?
देखिए, इस वक्त बहुत से केसेस चल रहे हैं और ये केसेस जो हैं ये अभी की सरकार ने नहीं बनाए हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर इल्जाम ये था कि वो जब पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एलएनजी टर्मिनल का एक ठेका दिया था अपनी मनपसंद कंपनी को 15 साल के लिए, जिससे पाकिस्तान के खजाने को अरबों का नुकसान हुआ था। और ये एलएनजी कतर से इंपोर्ट की जा रही थी उस वक्त। उस वक्त भी जो ऑपोजिशन में लोग थे उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। केसेस तो ये पुराने हैं, लेकिन पीएमएलएन जो नवाज शरीफ की पार्टी है फिलहाल उसके बहुत से लीडर्स जो हैं वो जेल में हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत से जो लीडर्स हैं जो कि ऑपोजिशन की दूसरी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, उनके खिलाफ बहुत कड़ी जो है वो अकाउंटेबिलिटी चल रही है। तो ऑपोजिशन पार्टीज तो ये कहती हैं कि ये पॉलिटिकल एक तरह से रिवेंज लिया जा रहा है। और नून लीग के राना सनाउल्लाह, ख्वाजा रफीक, खुद नवाज शरीफ जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो इस वक्त जेल में है और उनके भाई जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं वो खुद भी जमानत पे रिहा है। गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि ये पुराने केसेस हैं और वो कोई विक्टिमाइजेशन नहीं कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी जो है वो यही प्ली लेती हैं कि ये सब जो अकाउंटेबिलिटी है ये ऑपोजिशन पार्टी की ही क्यों हो रही है और हुकूमत के जो लोग हैं उनके ऊपर इतनी सख्ती नहीं की जा रही।
तो अब इनकी क्या पॉलिसी है कि किस तरह से, क्या ये जो नवाज की पार्टी है ये इसका विरोध कर रही है या पॉलिटिकल तरीके से कैसे देखा जा रहा है?
पर ओपिनियन डिवाइडेड है। जाहिर है कि वो लोग जो कि पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं या पीपल्स पार्टी को या ऑपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करते हैं वो तो उसे इसी लेंस से देख रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन, लेकिन बहुत से वो लोग हैं जो कि इमरान खान के इस नारे के ऊपर बिलीव करते हैं कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और एक रूथलेस अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी है और होगी और होनी चाहिए। जहां तक रही बात की इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो पीएमएलएन जो है वो इसको अपने डेमोक्रेटिक उसके अंदर दायरे में रहते हुए इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। अब देखना यह है कि क्या कोई नई पॉलिसी इसके ऊपर होगी, क्या ज्यादा सख्ती होगी, क्या जो प्रोटेस्ट है वो सड़कों पे आएगा। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल तो ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज करने और इसको आड़े हाथों लेने की तक ही बात महदूद है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार, जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता शुमेला जाफरी इस्लामाबाद से। असम और इसके ऊपरी हिस्से में लगातार हो रही बारिश के चलते आई बाढ़ से प्रदेश के कुल 33 में से 29 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी की गई 17 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 4,626 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और 58,00,000 की आबादी लगभग प्रभावित है। असम में मरने वालों की तादाद अब तक 39 हो चुकी है। दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
দাইলে আলুয়ে ভাতে তেনেকে নাপায় ন পানপানী ক'ত নাপাম ঘটিকে পোৱা যায় আৰু খাবলৈ কাৰণে হাজবেণ্ড আইন দিয়া আৰু তেতিয়া খাওঁ আৰু পানীটো যেতিয়া সোমোৱা নাছিলে অলপ অলপ সোমাইছিলে তেতিয়া ভাত চাত বনাই মেলি খাই মেলি আৰু।
অসমীয়া ভাষা মে বোল ৰহি 36 সাল কি লিপি দাস কা ঘৰ বাঢ়নে তবাহ কৰ দিয়া হে। আধি অধুৰী ব্যৱস্থা কে তহত ডিব্ৰুগড় জিলে কে লে যায় হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল মে बनाए गए एक राहत शिविर में रह रही लिपि 5 महीने के गर्भ से हैं। वो कह रही हैं, यहाँ खाने में केवल चावल दाल और आलू मिलता है, राहत शिविर में अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। मैं 5 महीने के गर्भ से हूँ, 1 सप्ताह पहले सब कुछ ठीक था। मैं अपने पति के साथ चेकअप करवाने अस्पताल भी गई थी, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा था, लेकिन फिर बाढ़ आ गई और हमारे परिवार को सब कुछ छोड़कर राहत शिविर में आना पड़ा। दरअसल 2 दिन पहले 28 साल की आरती खटवार भी इसी राहत शिविर में थी। वो 9 महीने के गर्भ से थी और उन्हें इसी महीने बच्चा होने वाला है। राहत शिविर की स्थिति को देखते हुए आरती के घर वालों ने उसे डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती करवाया। बाढ़ प्रभावित इस इलाके को पार करते हुए मैं एक देसी नाव के सहारे कोलाखुआ के गोजाए गाँव पहुँचा। इस गांव में ज्यादातर मकान की केवल छत दिखाई दे रही थी, क्योंकि बांस और टीन की छत से बने करीब सभी मकान आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए थे और खाली थे। यहां चारों तरफ पानी ही पानी भरा था। यहां से लगभग सभी परिवार अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगह पर जा चुके हैं। केवल कुछ लोग बांस और पक्के पिलर से बना ऊंचे चांग घर में अपने फर्नीचर और बाकी सामान की रखवाली के लिए रुके हुए हैं। चांग घर के ऊपर अपने बेटे के साथ रह रही तिलू रानी सैकिया हजारिका ने BBC से कहा,
बानपानी शुक्रबार 2টা মান বজাৰ পৰা হৈছিলে, অসুবিধা যথেষ্ট হৈছে বা আমি পানী শুকুবাৰ পৰা বাঢ়ি আছে।
हम बाढ़ के कारण पिछले 1 हफ्ते से यहां बंदी हैं, कोई हमारी खबर लेने नहीं आता। सरकार की तरफ से राहत सामग्री 1 दिन मिली थी। पिछले 2 दिन से मेरा 10 साल का बेटा बुखार से तप रहा है, लेकिन हम दवाई लाने के लिए यहाँ से नहीं निकल पा रहे। ये थे तिलू रानी सैकिया हजारिका के शब्द। असम आपदा विभाग की एक जानकारी के अनुसार बाढ़ का कहर समूचे राज्य में जारी है। सबसे ज्यादा नुकसान राज्य के धुबड़ी, मोरीगांव, धेमाजी और दरंग जिले में हुआ है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी कम होने की बात कही जा रही है, लेकिन 13 जुलाई से अब तक कम से कम 39 वन्य जीवों की बाढ़ के कारण मौत हो गई है। इनमें 5 एक सींग वाले गैंडे बताए गए हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत सामग्री और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे डिब्रूगढ़ जिला उपायुक्त पल्लव गोपाल झा कहते हैं,
मोटा मोटी जब तक बाढ़ का सीजन रहेगा उस समय तक मतलब हेल्थ इश्यूज या बाढ़ से रिलेटेड इश्यूज ये सब सारा से निपटते रहना, और बाकी हर जगह प्रशासन ने रिलीफ का कार्य चल रहा है।
दरअसल कोलाखुआ गोजाई गांव का ये इलाका ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी चेचा के बिल्कुल नजदीक है। फिलहाल इलाके में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में राहत शिविरों में रह रहे लोग कब तक वापस अपने घर लौटेंगे कोई नहीं जानता। दिलीप कुमार शर्मा, BBC डिब्रूगढ़।
तो असम में बाढ़ के चलते बेघर हुए सैकड़ों लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं और वहां पर उन्हें राहत भी नहीं मिल पा रही। डिब्रूगढ़ जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का और राहत शिविरों का दौरा किया था हमारे सहयोगी दिलीप कुमार शर्मा ने। और कार्यक्रम में अब बात आपकी भेजी चिट्ठियों की।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और सूर्यांशी पांडे मेरे साथ बैठी हुई हैं, चिट्ठियां देख रही हैं, ईमेल देख रही हैं और पता नहीं क्या सोच रही हैं।
नहीं, मैं एक लिखाई को देखकर कुछ सोच
समझने की कोशिश कर रही है कि मैं पढ़ भी पाऊंगी या नहीं पढ़ पाऊंगी।
लेकिन जिस खत से हम शुरुआत करने वाले हैं राजेश जी, ये लिखाई बहुत ही खूबसूरत है और ये लिखाई है ऋषिकेश गुप्त की, जो गाजीपुर से लिखते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश।
क्या लिख रहे हैं?
और ये लिखते हैं कि वैसे तो रेडियो की महत्ता बहुत है, और उन्होंने बोला कि पिछले 5 दिनों से मेरे गांव की विद्युत व्यवस्था ठप है, यानी कि
बिजली नहीं आ रही है,
तो डिबरी और लालटेन का सहारा लिया जा रहा है और मोबाइल फोन को खूंटी पर टांग दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस सरला सावन में जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसे में BBC के रेडियो ऐप के भरोसे अगर रहते तो ना ही रेहान फजल की करगिल पर विवेचना सुन पाते और ना ही सूडान हमला। तो ऐसे में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि रेडियो की महत्ता बहुत है, तो कृपा करके उसे ज्यादा प्रोत्साहन दे और सुभलता जो उसके अंदर है वो और किसी मीडियम में नहीं।
कितनी कमाल की बात है कि ये भी तस्वीर का एक पहलू है। 4-5 दिन से इनके गांव में लाइट नहीं आई है, बिजली नहीं आई है, और रेडियो के जरिए ये हमसे संपर्क में हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भारत की यथार्थ यही है, लेकिन उस तस्वीर का एक पहलू ये भी है। लिखा आपने और आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, ऋषिकेश गुप्त जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मलिकपुरा गाँव से इन्होंने लिखा है, गाजीपुर वाराणसी मंडल से।
आगे अगर बढ़े तो ये जो खत भेजा है वो अशोक कुमार ठाकुर ने भेजा है, और ये लिखते हैं अदलपुर दरभंगा बिहार से।
क्या लिखते हैं?
और ये लिखते हैं कि BBC की संध्याकालीन सभा में प्रसारित कार्यक्रम इंडिया बोल में सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्त की उम्र बढ़ाया जाए, इस पर जो परिचर्चा हुई वो उन्हें बहुत ही विशेष लगी और बहुत ही तर्कसंगत और प्रभावित किया उनको।
जी, हम इसी तरह के कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादातर जो हमारे श्रोता हैं वो उससे कुछ हासिल कर सकें, लाभ उठा सकें या फिर उनको कुछ जानकारी मिल सके, तो धन्यवाद।
अब हम मेल की तरफ जाते हैं, तो ये पहला मेल जो है वो भेजा है पुणे महाराष्ट्र से, और ये लिखते हैं अमित बरपे, और ये लिख रहे हैं कि मुझे इंडिया बोल बहुत अच्छा लगता है, मैंने इंडिया बोल में फ़ोन करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन यह नाकाम ही होती रही है, तो मैं विनती करता हूँ कि कम से कम मेरा मेल तो शामिल करें।
अनिल भाई, मेल तो आपका शामिल हो गया है, लेकिन इंडिया बोल में जब आप फ़ोन लगाते हैं, हमारे बहुत सारे दूसरे श्रोताओं की भी शिकायत रहती है कि फ़ोन लग नहीं पाता। अब हमारे पास इसका सिर्फ यही जवाब है कि अगर आप हमें अपना फ़ोन नंबर दे दें किसी ज़रिए से, ईमेल्स के ज़रिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस कार्यक्रम में शामिल करें।
अब ये अगला ईमेल सोनी अंजलि जी ने लिखा है, और इन्होंने अपना नाम तो लिखा है लेकिन पता नहीं बताया है
कहाँ से लिख रही है, नहीं बताया।
पर इन्होंने ये लिखा है कि मैं पिछले 5 महीने से बीबीसी के कार्यक्रम सुन रही हूँ, इससे मुझे अपनी पढ़ाई में बहुत मदद मिल रही है, और मैं कभी भी 7:30 और 6:30 का कार्यक्रम सुनना नहीं भूलती।
मुझे लगता है कि अंजलि जी शायद हिंदी भाषी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी थी। अच्छा। और हमने उसका अनुवाद करके हम प्रसारित कर रहे हैं। तो अंजलि जी, अगर आप पिछले 5 महीने से कार्यक्रम सुन रही हैं तो जाहिर है आपको अच्छा लग रहा होगा। आप तो सुनिए, अपनी राय से हमें अवगत कराइए, और अपने आसपास के जो लोग हैं आपके क्लास में या आपके जो सहपाठी लोग हैं उनसे भी कहिएगा कि ये कार्यक्रम सुन के उनको फायदा ही होगा।
हाँ। आगे बढ़े,
तो आज ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ तारीफों की चिट्ठियां मिल रही हैं, तो कुछ मजा सा नहीं आया, आलोचना तो कहीं हुई नहीं।
एक जगह मैंने पढ़ा था आलोचना जो है वो की गई है, और पढ़ने की मैं
हाँ बिल्कुल आलोचना तो सर माथे कबीरदास कह गए हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यानी जो निंदक है वही आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। तो क्या कहते हैं
ये दीपक श्रीवास्तव ने लिखा है, और ये उत्तर प्रदेश बलिया से लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि मैं बीबीसी का नियमित श्रोता हूँ, हालांकि ये मेरा पहला ईमेल है, और ये लिख रहे हैं कि दिन भर के अंक में राजेश जोशी ने हाफिज सईद के लिए सम्माननीय शब्दों का इस्तेमाल किया जो समझ से परे है।
यानी मुझ पर ही दीपक भाई आपने लिखा है, अच्छा किस वजह से इनको एतराज है?
हाँ, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, आप ये भी नहीं कह सकते कि जोशी जी की हिंदी कमजोर है, आखिर बीबीसी को आतंकवादियों के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है?
दीपक भाई, ये आप का ही सवाल नहीं है, ये बहुत सारे हमारे श्रोताओं का सवाल है, और हम कई बार इसका स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं कि अपने प्रसारणों में या अपने लेखन में हम तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करने से बचते हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता होगा कि हम जिन लोगों को के खिलाफ चरमपंथ के आरोप हैं या जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है कि वो चरमपंथी हैं, उनके बारे में भी हम इज्जत वाली भाषा का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बीबीसी में हम जैसे हिटलर का अगर जिक्र करेंगे तो हिटलर था कहने के बजाय हिटलर थे, ये एक तरीका है कहने का, क्योंकि हमारे तू तड़ाक कहने से ना तो इतिहास बदलता है ना भविष्य बदलेगा। तो ये बात जाहिर है, आपकी बात में ये बात सही है कि क्यों हाफिज सईद के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। हम दरअसल किसी को जजमेंट से तोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आप और भारत सरकार या पाकिस्तान सरकार तय करेगी। एक संगठन के तौर पे, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम किसी को गलत या सही साबित करें, वो अदालतों की जिम्मेदारी है, वो निजी तौर पे मेरी जिम्मेदारी हो सकती है, मेरा एक अपना ख्याल हो सकता है, लेकिन प्रसारण में हम बचते हैं किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने में। अब चिट्ठियाँ तो आपके पास और भी बहुत हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए चलते चलते पता बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
आपने अपनी भेजी हुई चिट्ठियां सुन ली, और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
बीबीसी समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी को विधानसभा में विश्वास मत साबित करने के लिए एक दिन का वक्त और मिल गया है। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर के फैसले के विरोध में रात भर धरने पर बैठने का ऐलान किया है। जापान के क्योटो शहर में हुई संदिग्ध आगजनी की घटना में अब तक 33 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन के आर्थिक मामलों पर नजर रखने वाले आधिकारिक संस्थान ने अनुमान लगाया है कि ब्रिटेन अगर बिना ब्रेक्जिट डील के यूरोपीय संघ से बाहर होता है तो अगले साल उसे मंदी से जूझना होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी पिछली सरकार के दौरान एक गैस समझौते में कथित गड़बड़ी को लेकर हुई है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें और bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। नमस्कार।